देखेंगे कि क्या इस्लाम किसी किस्म की तफरीक को पसंद नहीं करता, तो चंद चीज़ें जो कुरान और हदीस की रोशनी में हमें मिलती हैं कि हम वो काम कर सकते हैं और कब कर सकते हैं, वो आपके सामने रखूंगी। कुछ चीज़ें तो पीछे गुजर गईं, जैसे एक एक हदीस आपको सुनाई कि अल्लाह के नबी ने घुड़दौड़, तीर चलाने और इसी तरह शौहर का अपनी बीवी से फ़ायदा उठाना, इसको भी अलाउ किया। इसी तरह आप देखिए कि तैराकी, स्विमिंग जो है उसका हमें इशारा मिलता है हदीस से। लेकिन अगर आप इस वक्त एक बुनियादी असूल समझ लें तो इंशाल्लाह ताला आप हर जायज़ और नाजायज़ एंटरटेनमेंट के बीच में फ़र्क कर सकेंगे। पहली बात क्या है कि जो खेल दीन से गुमराह होने या दूसरों को गुमराह करने का सबब बने वो कुफर है। मसलन नजर बिन हारिस ने जो चीज़ें ला के रखी थी उसका मकसद क्या था? कि लोग अल्लाह के नबी सल्लम से फ़ायदा ना उठा सकें। डी ट्रैक करना, जहनों को मुसख़र करना, मुतासिर करना, आज भी इसी सोच के तहत जो कलामे दिल फरेब है वो आम किया जा रहा है, और नस्लों की नस्लें तो छोड़िए, बड़े बुजुर्ग बच्चे हर एक उसका शिकार हुए हुए दिखते हैं। लिहाजा ये चीज़ कुफर है इस सोच से हो। दूसरी बात यह है कि कोई भी लहव इस्लामी अकायद से तो नहीं भटकाता इंसान को, मगर उनको किसी हराम और मासियत में मुब्तला कर दे, ये दूसरा दर्जा है। पहला क्या है? हर वो तफरी जो बंदे को कुफर पे डाल दे, इंसान इतना ज़्यादा उस कल्चर का दिलदादा हो जाए कि खुदा फरामोश हो जाए कि लो छोड़ो अब मैं मुसलमान अपने आप को साबित करूंगा, तो ये छोड़ना पड़ेगा। लिहाजा बाज़ लोग फिर ऐसी गंदी चीज़ों में जब पड़ते हैं तो उसके बाद वो अपने आप को इस्लाम से भी दूर करते हैं कि ना रहो मुसलमान, ना लगे ये पाबंदियाँ। दूसरी सूरत क्या है? किसके नतीजे में हराम में मुब्तला होने का डर है। और आप देख सकते हैं जहाँ लाहवल हदीस की कोई एक चीज़ होगी वहाँ दूसरी भी ज़रूर होगी, और लोग पहले हराम चीज़ें देखते हैं फिर करने लगते हैं। लिहाजा हराम में इंडल्ज होना जैसे एक स्लिपरी है ना, आप चट्टान पर खड़े थे, अगर एक हल्का सा आपका पाँव गिरा तो आप एक स्टेप नीचे नहीं गिरेंगे, फिर आप नीचे तह में गिरेंगे। यही गलत चीज़ों का होता है, जहाँ जिनसी जज्बात को बढ़ाने वाली चीज़ें होती हैं, गाने ऐसे हैं, फिक्शन ऐसा है, तस्वीरें ऐसी हैं। हो सकता है किसी शख्स का आगाज़ ऐसी चीज़ों में सिर्फ एक क्लिक दबाने से हो कि चलो मैं देखता हूँ क्या है, एक गंदी तस्वीर देखी, फिर कोई गंदे बोल सुने, फिर कोई गंदा स्लॉट देखा, और होते होते इंसान उस बुराई के अंदर खुद मुलव्विस हो जाता है। फिर इसी तरह आप देखिए कि हराम और गुनाह की चीज़ों में जब इंसान जाता है, तीसरे दर्जे पे आप लिख सकते हैं कि कबायर का इंसान को आदी कर देती हैं ये चीज़ें। मसलन आप देखिए कि जुआ, शराब, ये सारी चीज़ें इंसान को हराम में ले लेती हैं। फिर इंसान नमाज से गाफिल हो जाता है, फ़र्ज़ नहीं अदा करता, घर वालों से दूर हो जाता है, इस चीज़ से इंसान अपने आप को दूर करता है। फिर इससे अगली चीज़ आप इसमें जहन में रखिए कि कुफर, हराम और कबायर के बाद ऐसी तमाम चीज़ें जो बंदे के सर पर गुनाहों के अंबार लगा दें, यानी सगीरा गुनाह कह लें आप उसको, जिसको हम सगीरा कहते हैं। मतलब लोग कहते हैं क्या हरज है, हम खबरें तो सुन रहे हैं, डिस्कस कर लेते हैं, बस आप खबरें सुनने के लिए टीवी लगाते हैं, ठीक है सुन लीजिए, अपनी नज़रों की हिफाजत रखें। अगर आप एक गैर महरम औरत की ज़ुबान से खबरें सुन रहे हैं तो आप गौर करें कि आप देख भी रहे हैं। क्या आप ये सोच सकते हैं कि जिसको वाकई खबरें सुननी है क्या उसको टीवी देखना लाजमी है? एक औरत खूबसूरत मैचिंग कपड़ों के साथ उसके कपड़ों के एडवर्टाइजमेंट भी आते रहे, फलां बुटीक से वो स्टाइल से गले में एक साइड पे पट्टी की तरह दुपट्टा डाले बैठी हो और बालों को बड़ी अदा से लहराती हो, इसकी कोई ज़रूरत होती है खबरों में? और क्या आज की खबरें सिर्फ एक जाल नहीं है कि बार बार सुनाओ कि जिसकी वजह से इंसान बिल्कुल ही अपने आप को उस में ट्रैप कर लेता है, नज़रों की हिफाजत होती है? क्या आप मान सकते हैं कि एक मर्द जो इस तरह की चीज़ें देखता सुनता है बाद में वो स्क्रीन पे आने वाली लड़की या औरत और अपनी बीवी में कंपैरिजन नहीं करता होगा? करता है कि नहीं करता? इस पे एक पूरा लेक्चर है, मीडिया के असरात हमारी घरेलू ज़िंदगी पे। आज लड़कों को लड़कियां क्यों पसंद नहीं आती? इंडल्ज हो गए। जो लड़का हराम की तरफ चला जाएगा उसको अपनी सीधी साधी बीवी अच्छी नहीं लगेगी, और जो आंटीज नुमा माएँ और आंटियाँ देखते हुए ड्रामों फिल्मों में देखते हैं उनको अपनी सीधी साधी माँ ही नहीं अच्छी लगती कि ये तो बिल्कुल ही थर्ड क्लास किस्म की माँ है। ना चाहते हुए भी इंसान का जहन इन चीज़ों में भड़कने लगता है। फिर इसी तरह आप देखिए कि जो फुहश और फजूल नावल होते हैं, फुहश अशार हैं, अहले बातिल की किताबें देखना, लिखना, पढ़ना, ये सारी इसी के अंदर आती हैं। मसलन कोई जराइम पेशा नहीं, मिसाल है फेंस मूवीज, ऐसी चोरियां होते हुए दिखा रहे। अब उसके बाद क्या जहन सही रहता है? कितना असर रहता है? मैं तो देखती हूँ कि मेरे जहन के अंदर एक दफा एक चीज चली जाए ना, वो घूम घूम के सारा दिन उस पर रहती है। कल ऐसा पावर पॉइंट देखा जो अल्लाह ताला की बड़ाई और लिल्लाहि मा फिस समावात को शो करता है कि सब कुछ अल्लाह का है। अब 10 मिनट से भी कम का वो क्लिप देखा, मैं कह सकती हूँ कि रात सोने से पहले तक मेरा जहन बिल्कुल यूं घूम रहा था। पूरा वक्त मुझे वो स्लॉट्स नजर आ रहे थे और मैं सोच रही थी, अल्लाह तेरा इतना कुछ है, तेरी नाफरमानी करते हैं, तेरे रास्ते में निकलना मुश्किल है, तेरे काम मुश्किल हैं, अधूरे लगते हैं, नामुमकिन लगते हैं। तो दिल में असर हुआ ना। अब बिलफर्ज अल्लाह ना करे मैंने 10 मिनट का कोई स्लॉट देखा होता किसी हॉरर मूवी का, क्या मेरे जहन पे असर ना रहता? कोई सस्पेंस मूवी का, कोई रोमांटिक मूवी का, फिक्शन, थ्रिल। दिमाग क्यों बच्चों के ट्रैप होते हैं? आप देखिए कभी बच्चों को चलते इधर हैं देख कहीं और रहे होते हैं, बुला मार रही होती है वो हवा में देख रहे होते हैं, कभी कानों पे कुछ लगा होता है चल रहे हैं खा रहे होते हैं। बाज़ दफ़ा आप फील करिएगा कि बच्चे टीवी के आगे बैठ के कुछ खा रहे हैं ना, तो बर्गर यूं खा रहे हैं और आधा नीचे गिरा रहे हैं। उनके से इतनी भी जरूरत नहीं कि वो नजरें थोड़ी झुका सकें कि हमारी गोद में जो बर्गर के अंदर से चीज़ गिर गई उसको उठा के खा लें। बाज़ माएँ कहती हैं देख के चलो, क्यों? कि वो जहन ही चल पड़ता है। तो लिहाजा एक हद तक तो यहाँ चीज़ हुई। अब इसके बाद दूसरे दर्जे पे क्या है कि वो खेल ना जिनमें कोई कुफर है, ना कोई खुली हुई नाफरमानी है, लेकिन उसमें वक्त का ज़िया है, एनर्जी का ज़िया है। ऐसे खेल कुफर में तो आप ना करें, मकरूहात में कर लें। ऐसी चीज़ों में मसलन आप देखिए कि चले हम आज के करंट दौर की बात कर लेते हैं, मैचेस, बच्चा बच्चा मैचों के पीछे भाग रहा है, लड़के मर्द औरतें। आप बताइए कि दो पार्टियां जीती, इंजाम क्या हुआ? एक जीत के एक हार गया, मिला क्या? प्रैक्टिकल फायदा, एक ज़हनी फायदा है ना, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है। आपको क्या मिला उससे? चलें कहीं कुफर और इस्लाम की जंग हुई, कोई इलाका फतह हुआ, कोई ज़मीन का टुकड़ा आपके हाथ में आ गया, कुछ बात समझ आती है ना। एक बेकार चीज़ में तो क्या एक मुसलमान के पास इतना वक्त है? कभी बंदा ऐसी जस्ट फॉर एंजॉयमेंट टेस्ट चेंज करने के लिए कोई देख रहे हैं? नो प्रॉब्लम, मर्द है तो मर्द देखते हैं। हम बात करते हैं कि मर्द खेल रहे हैं, लड़कियां देख रही हैं। सिर्फ याद रखें कि मर्दों ही की निकाहें नहीं गंदी होती, औरतों की भी होती हैं। जो औरतें टीवी पे सजे संवरे लड़के और मर्दों को देखती हैं वो भी कंपेयर करती हैं अपने सीधे साधे मर्दों के साथ, और जो फिल्मों की हीरोइनें और जो हीरोज़ हैं उसकी वजह से यकीनन घरेलू ज़िंदगी मुतासर होती है। अब मैच चल रहा है, आदमी खेल रहे हैं, अमूमन आप देखिए कि पहली बात है कि उनका लिबास सातिर नहीं होता। कुरान ने वही जो दो शर्तें लगा दी, साफ ना हो और शफाफ ना हो, ये औरत के लिए नहीं है, ये मर्द के लिए भी है कि ना लिबास इतना तंग हो कि उसके अंदर से फिगर पूरा दिखे, और ना लिबास इतना टाइट हो यानी स्ट्रेची हो, फ्लेक्सिबल हो कि जिसके अंदर जिस्म दिखे। खिलाड़ियों के तो जान के बनाए इस तरह के जाते हैं कि उनको ईजी लगे। क्या आप शलवारें खुली और अकड़े हुए कपड़े पहनता किसी खिलाड़ी को देखते हैं जिसमें जिस्म छुप जाता है? क्या उठते उछलते कूदते जिस्म नहीं दिखता? लड़कियों के वार्डरोब्स में क्रिकेटर्स की तस्वीरें क्यों होती हैं? फिर बड़े बड़े पोस्टर्स क्यों हैं? फिर उनके फाइल कवर्स पे ये चीज़ें क्यों हैं? फिर आप कहते हैं नहीं हम तो जस्ट इंजॉयमेंट के लिए मूवी देख रहे थे, गाना सुन लिया, कुछ नहीं होता। तो बताएं कि फिर मूवी स्टार्स की आपकी सेलफोन्स में तस्वीरें क्यों हैं? फिर आपको उनकी ज़िंदगी के अंदर इतना इंटरेस्ट क्यों है? मैं तो नहीं मानती इस बात को। इवन हम सारा वक्त कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले हैं, अल्लाह ना करे ज़िंदगी में किसी वक्त किसी ऐसी जगह पे हमें जाना पड़े कि जहाँ ये सब कुछ हो रहा हो। मैं इंसान होने के नाते अपने ऊपर आपको दावा नहीं करके बता सकती कि मैं जिनको देखूंगी मैं उनके बारे में सोचूंगी नहीं, ये नहीं हो सकता, ये धोखा है। तो बेफायदा चीज़ों से भी कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं। अब आ गई एक और किस्म, मसलन ये खेल भी हम छोड़ देते हैं, ठीक है, कोई अगर खेल रहा है, कोई हल्का फुल्का फुटबॉल खेल रहे हैं, नो प्रॉब्लम, देख लें। इस तरह मुतलकन देखना हराम भी नहीं है कि औरत मर्द को नहीं देख सकती। अब क्या कि अगर कभी जस्ट फॉर, ठीक है, लेकिन अगर ये फोबिया ना हो तो फिर। एक बहुत अच्छे स्पीकर हैं तो वो कहते हैं कि मैं भी क्रिकेट को जायज़ समझता अगर मैंने कल एक मंजर ना देखा होता। फिर वो बड़े अच्छे जॉली अंदाज में सुनाते हैं कि कल मुझे कोई काम था, बहुत अर्जेंट काम था, मैं कोर्ट में गया। कोर्ट में गया तो पहले तो मुझे दरवाजे तक पहुंचने और अंदर जाने में मुश्किल हुई, क्यों कि जो लोग थे वो मैच चल रहा था टीवी की स्क्रीन पे वहाँ, और सारा अमला जो था वो देखने में मशगूल था। कहते मैंने जरा कुछ गुस्सा दिखाया कि मैं इतने अहम काम से आया हूँ, तुम लोग डिले कर रहे हो। वो जी वो देखे छक्का लग रहा है, वो देखे जी चौका लग रहा है। खैर कहते हैं कि मैं उन मराहल से गुजरता हुआ अंदर पहुंचा। जब मैं असल जगह पे पहुंचा, अब मसला जी के वो जज साहब क्यों नहीं, क्या हो रहा है मसला है? कहते वो अंदर मैच देख रहे हैं। कहते आज मैंने कहा कि आज के बाद वाकई ये देखना नाजायज़ है, कोई मर रहा है कोई बीमार है, इवन हॉस्पिटल्स में। तो मैं तो इसको समझती हूँ कि हर बंदा अपने आप को खुद देख सकता है कि किस चीज़ को देखने के बाद उसके दिल में क्या जज्बात आ रहे हैं, कितना वक्त ज़ाया हो रहा है। फिर इसी तरह देखिए, शादी का मौका है, कोई खुशी है घर में, कोई मौका ऐसा रहा है, ईद का दिन है, अगर लड़कियां बैठी बैठी कोई बातें कर लें, कुछ इस किस्म का हल्की बातें, और उनकी बातें भी मोस्टली इसी तरह की होती हैं जैसे मुल्क की मोहब्बत के गाने हैं। वैसे मैं ये बता दूं कि कौमी तरानों से मुल्क तरक्की नहीं करते, लेकिन उभारने के लिए मोहब्बत है, बाप बेटी की मोहब्बत, रुखसती का गाना, माँ की मोहब्बत, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन फिर उसमें म्यूजिक ना हो, फिर आप कहते हैं अच्छा रुखसती के गाने देख सकते हैं तो सारी इंडियन फिल्मों के वो क्लिप्स लें, वो आप गाना उसी का थोड़ी देखेंगी, हीरोइन का लिबास भी देखेंगी, फिर आप वहाँ लड़कों को नाचता कूदता भी देखेंगी। तो लिहाजा हर एक अपनी लिमिट्स को खुद पहचानता है ना, ये शुगल होना चाहिए। अब आप बताइए कि कभी कभार सुनना, और आज के दौर में जिस तरह जो बच्चे बच्चियाँ और जो यंग बड़े बूढ़े एक सैलाब की तरह बह गए हैं, क्या इसमें फ़र्क दिखता है? आप कोई एक चीज़ कभी एक दफ़ा चखे, आपका जिस्म उसको पीछे कर देता है, आप कहते हैं आइंदा नहीं खाऊंगी, ये नहीं पीऊंगी, लेकिन अगर आप मुसलसल वही चीज़ खाने लग जाएं तो क्या होगा? मुश्किल होगी ना। तो लिहाजा इस तरह से एक इंसान अपने आप को रखे, बाकी कोई दौड़ रहे हैं आप उसको देखना चाहें, अपनी नज़रों की हिफाजत कर रहे हैं, कोई हरज की बात नहीं है। सही मुस्लिम की रिवायत है, मुस्नद अहमद में, सलमा बिन अकवो की रिवायत है कि अंसारे मदीना में एक साहेब दौड़ में बड़े माहिर थे, कोई इनसे सबकत ना ले जा सकता था। उन्होंने एक रोज़ ऐलान किया कि कोई है जो मेरे साथ दौड़ में मुकाबला करे। मैंने रसूलुल्लाह से इजाज़त चाही कि क्या मैं मुकाबला कर लूँ, आपने इजाज़त दे दी, तो मैं मुकाबले में आगे बढ़ गया। इससे क्या पता चला कि दौड़ भी कर सकते हैं मुकाबले की, जैसे रेसेस होती हैं। लेकिन फिर याद रखिए कि इस पर शर्त नहीं होगी, सट्टेबाजी नहीं होगी, कोई कुमारबाजी नहीं होगी। इसी तरह नेज़ों के साथ अरब लोग खेलते थे, यही खेल अल्लाह के नबी ने दिखाया था, उसके अंदर उसकी इजाज़त हमें मिलती है। फिर इसी तरह एक रिवायत में आता है कि मैं उस खेल को पसंद नहीं करता कि तुम्हारे दीन में खुश्की और शिद्दत देखी जाए, यानी दीन को हर वक्त रोने की बात नहीं है। इसी तरह ये भी वाक्यात आते हैं कि जब सहाबा कराम कुरान और हदीस के मशागिल में थक जाते तो बाज़ औक़ात अरब के अशार या तारीखी वाक्यात से दिल बहलाते थे। तो हल्के फुल्के आप बैठे हैं कहीं, चले नानी माँ आप अपनी कहानी सुनाएं, कोई साला पढ़ के आपस में एक दूसरे को शेयर कर देना, कोई हरज की बात नहीं है। एक रिवायत का खुलासा है कि तुम अपने कुलूब को कभी कभी आराम दिया करो, जिससे कल्ब और दिमाग की तफरीक और इसके लिए कुछ वक्त निकालने का सबूत मिलता है। तो उम्मीद है कि बात जो है वो समझ में आ गई है। लेकिन कुछ खेल ऐसे हैं कि जिनको ख़ास तौर पे मना किया गया, मसलन शतरंज, चौसर, ये जो हमारे यहाँ इसके लिए कोई ख़ास नाम होते हैं, और इसमें हार जीत का खेल, क्योंकि इस पे पैसे लगते हैं, जुआ की एक किस्म हो जाती है। सही मुस्लिम की एक रिवायत है, हज़रत बुरैदा से रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो शख्स नर्द शेर यानी चौसर खेलता है वो ऐसा है जैसे इसने अपने हाथ खिंजीर के खून में रंगे हों। अब आज देखिए कि कसीनों के बाहर जब तक ये होती नहीं है, वो चलती नहीं है चीज़, तो शतरंज खेलने में भी यही चीज़ है। इसी तरह एक रिवायत से कबूतरबाजी को भी अल्लाह के नबी ने नाजायज़ करार दिया, अबू दाऊद की एक रिवायत है, यानी कबूतर उड़ाना, उनके मुकाबले कराना, मुनाजरे कराना, ये ठीक नहीं है। अब आखिरी चीज़ इसमें अगर हम देख लें अब तफरी में, कि जब इसमें गिना, गिना कहते हैं गाने को अरबी में, और मजामीर, मजामीर कहते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को, किसी भी चीज़ में जब म्यूजिकल चीज़ें आती हैं तो मुफस्सरीन कहते हैं कि लहवल हदीस की तफसीर गाने बजाने से बेहतर हो ही नहीं सकती, यानी यहाँ ख़ास तौर पे जहाँ म्यूज़िक है। आज तो आप खबरें नहीं सुन सकते म्यूज़िक के बगैर, इवन आज के दौर में तो आप कोई कुरान की भी चीज़ प्ले करते हैं तो समटाइम उसमें भी म्यूज़िक होता है जो नहीं होना चाहिए। तो ज़रूरत है इस बात की कि इस चीज़ को कम किया जाए। हम पीछे पढ़ चुके सूरह फुरकान में इबादुर्रहमान की सिफ़त के ला यशहदून अज़्ज़ूर, वो झूठी गवाही नहीं देते। तो इमाम अबू हनीफा और इमाम मुजाहिद और कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि ज़ूर से मुराद यहाँ गाना है, गाने की महफ़िलों में वो लोग नहीं बैठते। अबू दाऊद इब्ने माजा और कुछ और रिवायात में एक हदीस है अबू मालिक अलशरी से, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत के कुछ लोग शराब को इसका नाम बदल कर पियेंगे, یعنی کوئی خوبصورت سا نام رکھ دیں گے انگلش کا. ان کے سامنے معازف اور مزامیر ہوں گے یعنی گانے بجانے والے ساز و سامان کے ساتھ عورتوں کا گانا ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں خسف کر دے گا اور بعض کی صورتیں مسخ کر کے بندر اور سور بنا دے گا, یعنی زمین پھٹے گی اور وہ پورے کے پورے ان چیزوں کے ساتھ زمین میں چلے جائیں گے اور کچھ کی شکلیں بدلیں گی. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے اور طبلہ اور سارنگی کو حرام فرمایا اور فرمایا کہ ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے. یہ احمد ابو داؤد اور ابن حبان کی روایت ہے. ایک اور روایت سن لیجئے, تھوڑی سی طویل ہے, ترمذی کی حسن غریب حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب مال غنیمت کو شخصی دولت بنا لیا جائے, یہ بڑی قابل غور بات ہے, یعنی اجتماعی مال کو کوئی ذاتی ملکیہ سمجھ لے کہ یہ میں ہی جو اس کو کروں میں کر سکتا ہوں, شخصی دولت بنا لینا, اور جب لوگوں کی امانت کو مال غنیمت سمجھ لیا جائے, اور جب زکوٰۃ کو ایک تاوان سمجھا جائے یعنی بوجھ سمجھ کے دیا جائے, جب علم دین کو دنیا طلبی کے لیے سیکھا جانے لگے, اور جب مرد اپنی بیوی کی اطاعت اور ماں کی نافرمانی کرنے لگے, اور دوست کو اپنے قریب کرے اور باپ کو دور رکھے, اور مسجدوں میں شور و غل ہونے لگے, اور قبیلے کا سردار ان کا فاسق بدکار بن جائے, اور جب قوم کا سردار ان میں ارذل ترین بدترین آدمی ہو جائے, اور جب شریر آدمیوں کی عزت ان کے شر کے خوف سے کی جانے لگے, اور جب گانے والی عورتوں اور گانوں باجوں کا رواج عام ہو جائے, اور جب شرابیں پی جانے لگے, اور اس امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں پر لعنت کریں یعنی لوگ پچھلوں کو برا بھلا کہنے لگیں, تو اس وقت تم انتظار کرو ایک سرخ آندھی کا اور زلزلے کا اور زمین خسف ہونے کا اور صورتیں مسخ ہو جانے کا اور قیامت کی ایسی نشانیوں کا جو یکے بدیگرے اس طرح آئیں گی جیسے کسی ہار کی لڑی ٹوٹ جائے اور اس کے دانے یک بیک بکھر جائے. آج دکھ رہی ہیں یہ باتیں, کل ہم نے وہ کلپ بھی دیکھا کہ جو جاپان میں زلزلے کے آنے سے پہلے والے جاپان کے وہ حصے اور اب زلزلے کے بعد کے, یقین کریں قیامت دکھتی ہے کہ ایک طرف لش گرین باغ ہیں خوبصورتی اور صرف ایک, وہ کہتے ہیں کہ فتح علیہ طائف میں ربی والی کیفیت کہ ایک حلارا آیا اللہ کا سب گھاس جل کے راکھ ہو گئی دھواں دھار, اور ایسے لگتا ہے کہ وہ زمینیں ایسی ہوگی جیسے وہاں کوئی بستا نہیں تھا. تو کیا آج اگر ہم سر سبز جگہوں میں بیٹھے ہیں تو کیا ہمارے لیے یہ نہیں ہوگا؟ آج چاروں طرف دنیا کا کیا یہ نقشہ نہیں ہے؟ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے جو خبر دے دی وہ نہیں ہے؟ جتنے گانوں کے کیسٹ سی ڈیز البمز اور نہ جانے آج تو کیا کچھ ہے, کیا یہ آج عام نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا ایک وقت ہے کہ گانے والیاں سروں پہ ہوں گی. لوگ کہتے ہیں ہم سمجھتے نہیں تھے یہ کیا ہے, جب سے ہیڈ فون ایجاد ہوا لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ اب گانے والیاں سر پہ بیٹھی ہوئی ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ انسان جب لیٹے گا تو اس کے سر کے کناروں پر گانے والیاں ہوں گی. تو اس کو بھی میں نے کسی کی اسپیچ میں سنا کہ بیڈ کے سائڈ ٹیبل پہ جو میوزیکل انسٹرومنٹس ہوتے ہیں اور وہاں سے جو سنتے ہیں, تو کیا یہ ساری باتیں اللہ کے نبی کی سچ نہیں ہے؟ اس کے باوجود بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں, کیا گانا بجاتے خود برے؟ گانے اور شعر میں فرق میوزک کا ہی ہے. کوئی ایک عورت ہے اس کو ایک اچھا سا بول آتا ہے, محبت کا حصہ ہی, وہ اپنے شوہر کے لیے گا دیتی ہے, کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن وہی عورت اسٹیج پہ بن ٹھن کے میوزک کے ساتھ گاتی سناتی ہے تو وہ درست نہیں ہے. تو ساری باتوں میں ایک آخری بات کر دوں کہ جب یہ سارا کچھ اس طرح جائز نہیں تو کیا اللہ کے نام کے ساتھ محفل سما جائز ہے؟ قوالیاں جائز ہیں؟ تالیاں بجانا کس کا کام تھا؟ سورۃ انفال میں ہم پڑھ چکے کہ وہ تالیاں اور سیٹیاں بجاتے تھے. تو آج جب گانے گا گا کے اللہ کو خوش کریں گے اور انڈین گانوں کی دھنوں پہ نعتیں پڑھ پڑھ کے ہم اللہ کے نبی کو خوش کریں گے تو یہ درست نہیں. پھر ایک چھوٹی سی اور بات رہ گئی کہ فضول خرچی کتنی ہے. آج صرف ایک کام آپ کر لیں, صرف ایک موٹا موٹا کام, گھر جا کر اپنے گھر میں ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک چیزوں کی لسٹ بنا لیں, کتنی چیزیں ہیں جو میرے گھر میں انٹرٹینمنٹ کے نام پہ خریدی گئی ہیں اور کتنی مقصد کی ہیں. محض تفریح کے نام پہ اتنا پیسہ لگ جائے, اور ایک طرف اللہ کے دین کو ایک ایک پیسے کی ضرورت ہے, ایک ایک پینی کی ضرورت ہے. آج کیوں مسلمان پنپ نہیں رہے, آج کیوں اسلام نہیں ہے کہ ہمارے اپنی تعیشات پہ گھر کے اندر اپنی ذات پہ بے شمار لگتا ہے لیکن اللہ کے نام پہ ہم گن گن کے دیتے ہیں. یہ چیزیں کسی بھی قوم کے زوال کی علامت ہوتی ہیں کہ وہ اللہ کے نام پر تو لگانا نہ پسند کریں और एक शादी या एक फंक्शन पे लाखों लगा दें सिर्फ फन के नाम पे। इसलिए इन चीज़ों को देखें, ये तो गैर मुस्लिमों की बातें हैं। सूरह स्वात में आप पढ़ेंगे कि ज़ालिका ज़न्नुल्लज़ीना कफरू, ये तो काफ़रों का गुमान हो सकता है कि दुनिया मौज है मस्ती है, एक वीकेंड पे इधर गए एक पे उधर गए, खा लिया कमाया वो खा लिया, फिर कमाया फिर खा लिया, किस्तें दे दी। हर दिन ईद नहीं है, हम दुनिया में कोई खेलने नहीं आए। हम दुनिया में किस चीज़ को अहमियत दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, क्या ले रहे हैं। हर दिन शादी नहीं हो सकती, हर दिन फन नहीं हो सकता। ज़िंदगी एक संजीदा हकीकत है। हम तो अल्लाह के नाम को शादी ब्याह में से भी निकालते जा रहे हैं। मोमिन एक जिम्मेदार इंसान होता है, वो हर दिन सोचता है कि मेरी ज़िंदगी से एक दिन कम हो गया, अब मुझे लेना है। और इस्लाम का ये मिजाज है भी नहीं है। हमारा हाल क्या है, जुल्म की हद ये है कि जब हम गैर मुल्कों में रहते हैं ना, तो फन के नाम पे या कल्चर के नाम पे, किसी कौमी दिन के नाम पे भी जो मनाते हैं उसमें भी यही तईशात होती है। नाच नाच के गोरों को दिखाते हैं कि हम आज आज़ाद हुए थे, आज हमारा बड़ा दिन है, आज फला दिन है। और आज तो सबसे बड़ी लाहुल हदीस आप देख ले, फ़ोन कॉल्स बन गई हैं। किसी की मंगनी करके देखें आप, रात को वो कंप्यूटर पे बैठेंगे और सुबह हो जाएगी और सारी रात चैटिंग होती रहेगी। सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि लाहुल हदीस जो आता है ना, वो यंग एज के लड़के लड़कियों के बीच में आता है। एक रिपोर्ट पढ़ रही थी कि पाकिस्तान की कहानी, के बस रात को बैठते हैं ईशा की नमाज के बाद से फजर हो जाती है और सारी रात चैटिंग, वॉइस चैटिंग, सेलफोन मैसेजिंग। क्या करना है? आप सोचें कि आपको क्यों हर वक्त नए फ़ोन चाहिए? मसला कि आप क्यों अवेलेबल रहना चाहते हैं, आपने कौन सा अहम काम करना है? बच्चे बच्चे के हाथ में हमने फ़ोन दिए, फिर उसमें गंदी चीज़ें आती हैं। एक माँ ने गवाही दी कि उनके बच्चे के पास फ़ोन था, कहती हैं कि प्लान जो भी था फ़ोन का वही माँ बाप ने दिया हुआ, बाद में पता चला 50,000 करोन का बिल आ गया। ये क्या हुआ? अब माँ कहती है मेरी तो जान निकल गई, कि यानी कुछ बाहोश नहीं कि भाई कोई कारोबारी कॉल्स होंगी, कोई बिजनेस के कॉल्स होंगी। कहती है जब फ़ोन आया मैं तो परेशान हो गई बिल के, बाप को ना पता चले, जाके मैंने कंपनी वालों से पूछा कि भाई ये क्या किया। उसने फ़ौरन लिस्ट खोली, उसने कहा कि तुम्हारे बच्चे ने फ़ोन पे एक ऐसा मैसेज होता है, बटन होता है या वट एवर क्या होता है, वो आता है, जो ही आप उसको क्लिक कर देते हैं तो उसके बाद ये जो कॉल गर्ल्स हैं, जो गंदी औरतें हैं जो बुलाती हैं, उनकी कॉल्स आपके फ़ोन पे आती हैं और आने वाली हर कॉल का बिल आपको पड़ता है। कहती आपके इस फ़ोन से किसी एक वक्त में किसी ने वो एक बटन प्रेस किया तो सारे शहर की गंदी कॉल जो है वो आपके बच्चे के नाम पे आ गई हैं। तो 50, कहती मैंने कहाँ से पकड़ तकड़ के 50,000 करोन बिल जमा कराया कि बाप को पता चला वो तो मार देगा इस बच्चे को। अब बताएं आप क्या करेंगे? आज क्यों परेशान है? कभी बैठ के हम सोचें ना, तो ये लव का नतीजा है कि हम सुबह फ्रेश नहीं उठते, हम सुबह उठ ही नहीं सकते। अर्ली मॉर्निंग नहीं, आधी दिन गुजरता है तो हमारी आंखें खुलती हैं। कहते हैं ज़िंदगी एक ही बार मिली है, एक ही बार मिली है, नहीं बार बार तो नहीं मिली लेकिन 2 बार तो मिलेगी। ये तो इम्तिहान के दिन थे, वो बात है। कभी मूड चेंज कर लेता है बंदा, टेस्ट चेंज किया, रोज़ आप सब्जी खाते हैं, दाल खाते हैं, कभी गोश्त खा लेते हैं, कभी पुलाव पका लेते हैं, आपकी मर्ज़ी है, टेस्ट चेंज करता है बंदा, लेकिन आदी तो नहीं हो जाता। हर दिन अगर आप भारी खाने खाएंगे तो आपका तो मिजाज बदल जाएगा। तो इसलिए ये लाहौल हदीस है, फ़ोन भी आते हैं तो नमाज़ों में फ़ोन आ रहे हैं, बाज़ लोग जमात निकल रही होती है और वो बाहर खड़े फ़ोन पर बातें कर रहे हैं। आप बाज़ लोगों को देखिए ट्रेन पर बैठेंगे तो फ़ोन उनके हाथ में होगा। मैं तो सिर्फ एक चीज़ सोचती हूँ ऐसे वक्तों में, कि ये नसें नहीं भूलती, ये जो कन पट्टियाँ फूलती हैं ना बातें कर करके। मेरा ख्याल है कि पढ़ाने के अलावा अगर मैं ज़्यादा बातें करूँ तो मेरे तो यहाँ सूजन होने लगे, लेकिन हम बैठे। आप इन बातों को ठंडे मिजाज से लें, इसको ये ना लें कि कोई इनके ख्याल आते हैं, ये सख्ती कर रहे हैं, नहीं हम कुछ नहीं कर रहे, जो इफ़ेक्ट्स है ना वो इंसान खुद भुगत रहा है। जितनी ये टेक्नोलॉजी के नाम पे चीज़ें आम हो रही हैं ना, सेलफोन्स हैं, MP3 प्लेयर्स हैं, हर वक्त कानों को लगे, इसका हमारे बॉडी सेटअप पे कितना गड़बड़ हो रहा है। हम सारा दिन एनर्जी ले रहे हैं, ये सारी इसमें से रेस निकलती हैं, उसमें से निकलती हैं, हर जगह से निकलती है, इससे इंसान की बॉडी हाइपर होती है। आप महसूस करें जो बच्चे ज़्यादा वक्त मशीनों में गुजार रहे हैं ना, कहीं TV में, कहीं मीडिया में, वीडियो गेम्स में, वो आपकी बात नहीं सुनेंगे, वो हाइपर होंगे, वो कोक बहुत पियेंगे, वो स्नैकिंग बहुत करेंगे, सही खाना नहीं खाएंगे। फिर हमने इसमें ये भी देखा, लियुदिल्ला, खुद नहीं गाफिल बल्कि दूसरों को भी बहकाता है। वो तो एक नज़र बिन हारस था ना जो खरीदता है, आज 20 कंपनी है जिन्होंने ऐसी चीज़ों को मार्केट में फैलाया हुआ एक जाल की तरह, लेकिन इनका काम कब चलता है? जब हम लेते हैं। हम लेना छोड़ दें इनका बिकना ख़त्म हो जाएगा। और इन चीज़ों का सही इस्तेमाल करें। देखिए, इस्लाम टेक्नोलॉजी का दुश्मन नहीं है। इस्लाम नहीं चाहता कि आईपॉड्स ना बने, MP3s ना बने, लैपटॉप्स ना बने। ये तो बनने ही है, ये ना रोक सकता है ना रोकने की ज़रूरत है। करने की ज़रूरत है कि इनको इस्तेमाल करें अच्छी तरह। किस तरीके से हम इस तरह से काम करते हैं, तो इसके ज़रिए से आज देखिए इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है ना। प्रोपेगंडे जो होते हैं, जो ऐसी चीज़ें हो रही हैं, बसंत पे क्या होता है? ये जो हमारे मुल्क में फोबिया चलता है कि आज इस शहर की बसंत है, आज उस शहर की बसंत है, आपको पता है कि आज ये भी लाहुल हदीस बन चुका है। मुझे तो ऐसे लगता है कि ये लाहुल हदीस जो ना, ये इंसान के नफ्स को मोटा कर देते हैं। फिर ऐसे बंदे को कुरान अच्छा लगेगा? आपके जुमले क्यों दूसरों के कानों पर बोझ पड़ते हैं? क्यों उनको सबसे मुश्किल अल्लाह के दीन के लिए कमिट होना लगता है? क्योंकि कमिटमेंट्स तो कहीं और हो गई ना। ऐसा बंदा जब सामने नहीं आएगा, सबील अल्लाह से दूर हटेगा, तो किधर जाएगा? सबील शैतान पे जाएगा। आप किसी हाईवे पे जाते हैं, सीधी तरफ ना जाएं तो उल्टी तरफ ही जाएंगे ना। फिर हम जो सुनते हैं वो बोलते हैं, जो बोलते हैं उसका असर आता है। फिर इंसान हर चीज़ का मुकाबला करता है, लेकिन अपने नफ्स का मुकाबला करना उसके लिए मुमकिन नहीं। मैंने तो देखा, जब तक ये गाने नहीं छुटते ना, कुरान नहीं आता। आजमा लें, आप सब भी अपने आप से पूछें। इन आयतों के बाद अल्लाह ताला की कुछ सिफात को देख ले। खलक समावाती बगैर आमदिन तरो नहा, उसने बनाए आसमान बगैर सतूनों के जिनको तुम देखते हो। यानी सतून तो तुम्हें नहीं दिखते, लेकिन अल्लाह का ये आसमान, अल्लाह की ये तख्लीक तुम्हें दिखती है, हर लम्हे देखते हो। तरो नहा की ज़मीर है वो दो तरफ है। हा की ज़मीर या तो आसमान की तरफ जाती है या फिर अमद की तरफ जाती है। सतून, पहली सूरत में मानी क्या होगा? उसने आसमानों को सतूनों के बगैर पैदा किया, और तुम मुशाहिदा कर रहे हो कि आसमान सतूनों के बगैर कायम है। अगर आप दूसरी ले, अमद की जगह पे लें इसकी ज़मीर, तो मतलब क्या है कि आसमान के लिए ऐसे सतून नहीं बनाएं जो तुम्हें नज़र आए। यानी मुराद है कि वहाँ हो सकता है क्योंकि सतून हो और तुम उनको ना देखने वाले हो। बहरहाल दोनों ही बातें ठीक है, इस पर हम सूरत रात के शुरू में बात कर भी चुके। अल्लाह ताला कह रहे हैं, मेरी कुदरत को देखो, मैंने क्या कुछ बनाया है। अगर मेरा कोई हुक्म तुम्हें मुश्किल लगता है तो मेरी ज़ात को देख लो कि मैं कितना कुछ करने वाला हूँ। अल्लाह ताला कैसे करता है, आप ज़रा इमेजिन तो करें कि आसमान इतनी बड़ी छत है और इसमें बीच में पिलर्स होते हैं, जैसे ये हमारे इस हॉल में रखा हुआ लगा हुआ है। ज़रा बड़ी छत होगी तो आप देखें कि सपोर्ट के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। कैसा लगता, जगह जगह रुकावटें खड़ी होती, क्या बीच में पिलर आ गए। किसी जगह दर्द था तो वो काफ़ी देर इसी चीज़ पे बताती रही कि हॉल तो बहुत बड़ा है, लेकिन एक मसला है कि अगर हम यहाँ कुर्सी रखेंगे तो फिर बीच में पिलर्स आएंगे जो लोगों के व्यू को रोकेंगे, तो फिर फोकस नहीं होंगे। एक कमरे में इतना मसला है, तो आप ज़रा इमेजिनेशन में लाएँ कि आप बाहर निकलें, गाड़ी मोड़ने लगें, आसमान का पिलर आ जाए, उधर से मोड़ने लगे, दूसरा पिलर आ जाए। पॉसिबल था? आज हैं पिलर्स। अल्लाह ताला ने इसको ऐसे चार्जेस के ज़रिए और ऐसी ग्रेविटी और बरकी रो के ज़रिए से बांधा हुआ है कि हमें दिख नहीं रहे। अनविजिबल किस्म के पिलर्स हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम्हें देखो, तुम्हें गौर करना चाहिए। ज़मीन की बजाय आसमान के अंदर अल्लाह ताला ने इस किस्म की चीज़ें डाल दी। वल कफिल अर्दि रवासियन तमीदा बिकुम, और खड़े कर दिए ज़मीन में ऊँचे ऊँचे पहाड़ ताकि ज़मीन डोलती ना रहे तुम्हारे साथ। वबस सफ़ी हमिन कुल्लिदा बतिन, और उसने फैला दिए इसमें हर तरह के चलने वाले। दाब दबीब की जमा, दबीब से है ये लफ्ज़, चलने वाले, क्रिएचर के मानों में, यानी जो खुद चलते हैं, जो इस तरह के काम करते हैं। वन सलना मिनस समा ईमान, उसने नाजिल किया आसमान से पानी। फम बतना फी हमिन कुल्ली सौजिन करीम, पस उगाए हमने इसमें हर किस्म के नफीस जोड़े। इतना खूबसूरत मामला किया अल्लाह ताला ने। ये जो तमीदा का लफ्ज़ है, मैदा से है, बड़ी चीज़ के हिलने को कहते हैं, हरकत का मानी आता है असल में इसमें, और जौज किस्म काइंड के मानों में भी आता है। करीम, बहुत फ़ायदा देने वाले, उम्दा। अल्लाह ताला कह रहे हैं, हाज़ा खल्कुल्लाही, ये तो है अल्लाह की तख्लीक। फ़अरूनी माज़ा खल्कल्लज़ीना मिन दूनिही, बस मुझे दिखाओ क्या बनाया है उन लोगों ने जो इसके सिवा हैं। असल में शिर्क का रद्द आखिर में। और आपको बिल्कुल लगेगा कि इस आयत के यहाँ आने की वजह क्या है। वजह यह है कि जो अहकामात अल्लाह ताला देता है, उसको मानना जब मुश्किल लगे, तो फिर सोचो कि अल्लाह की ज़ात ने ये सब कुछ जो बनाया है, आखिर उसकी बात मानने में हरज क्या है, रुकावट क्या है। हर तरफ तसव्वुर में इतनी खूबसूरत चीज़ें अल्लाह ने दिखा दी, कहीं बारिश हो रही है, کئی پھول کھل رہے ہیں. خاصہ خلق اللہ, یہ ہے اللہ کی تخلیق. فارونی ماذا خلق الذین من دونی, تم دکھاؤ ان لوگوں نے کیا بنایا جن کے پیچھے بھاگے پھرتے ہو. بالکل تکبر کو توڑنے کا ایک نسخہ ہے یہ. کائنات پہ غور کرو, اس کتاب پہ غور کرو, اسے چھوڑ کر لہو الحدیث کے پیچھے پڑے ہو. بل الظالمون فی ضلال مبین, مگر ظالم کھلی گمراہی میں موجود ہیں. ان کا دل لہو میں لگتا ہے, اب اتنا وقت ہے ان کے پاس, اتنا دماغ ہے کہ اپنے مائنڈ کو ٹریپ کریں. دیکھیے بندہ مومن تو ہر لمحے اپنے آپ کو بچا بچا کے پھرتا ہے, اپنی آواز کو بچاتا ہے کہ میں زیادہ بول سکوں, وہ اپنے کانوں کو بیکار چیزوں سے بچاتا ہے کہ اگر کان بوجھل ہو جائیں گے تو پھر کلاس میں کیسے فوکس ہوں گا. وہ اپنی وقت کو بچاتا ہے, نیند پوری کرتا ہے کہ کہیں میں کلاس میں سو رہا ہوں گا تو میں کام کیسے کروں گا. وہ دماغ کے اندر بیکار فکر نہیں لاتا, غم نہیں لاتا, بہت خوشی نہیں لاتا. اصل بات یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو چینج کرے, ٹیسٹ بدل لیں, آپ دیکھیں گے وہی مزہ جو گانے میں آتا تھا وہ قرآن کی تلاوت میں آئے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اتنی سستی تفریح حاصل کرتے ہیں, اپنے بچوں کو خود کو ضائع کرتے ہیں. ان کو ہیلدی تفریحات کی ضرورت ہے. ان کا مزاج بدلو, اللہ کی قدرت دکھاؤ, اور اس طریقے سے اپنے آپ کو بھی بچایا ہے جیسے اب اپنی نسلوں کو بچاؤ کہ اللہ کی ذات جو اتنی بڑی ہے تو پھر ہم اپنے آپ کو اس کے آگے کیوں نہ دیں. فَهِيَ قُدْرَتُ اللَّهِ وَإِرَادَتَهُ, بس کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق کی بات ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو سب کچھ بنا دیا ہے, دیکھو کہ اللہ نے کیسی پیاری اپنی قدرت سے چیزیں بنائی کہ آسمان ہے اور اس کے نیچے کوئی آپ کو ستون نہیں دکھتے. اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کر کے ہم سب کو کھلی دعوت دی کہ ہم بھی اپنے دل دماغ کو اللہ کے آگے جھکائیں. یہ آسمان آسمان ایسا نہیں ہے جو ہمیں دکھتا ہے, تو پھر اس کے نیچے چلتے پھرتے تمہیں خوف نہیں آتا. اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو کسی لمحے تم پر گرا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق دے اور اللہ کی قدر کرنے والا بنا دے. یہاں پہ سبق پورا ہوا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.